पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज बहुत स्पेशल दिन है, चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव
भगवान की लीला से सब कुछ होता है। तो मैं थोड़ा सा इस विषय पे बोलूँगा कि गुरु तत्व क्या है, उसके बाद फिर हम ईश्वरपुरी के लाइफ के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। कि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें एक सद्गुरु के पास जाना है और उनसे नम्रतापूर्वक जिज्ञासा करनी है और साथ साथ सेवा भी करनी है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपातेन मतलब समर्पित होना और सेवा करना और प्रश्न भी पूछना। अगर हम सिर्फ प्रश्न पूछते हैं और सेवा नहीं करते तो हम उत्तर को प्राप्त नहीं करेंगे, उत्तर प्राप्त भी करेंगे तो उसका समझ में नहीं आएगा। जो दिव्य ज्ञान होता है, जैसे हम गुरु पूजा में अभी गा रहे थे, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकशीलो प्रेमा भक्ति यहाँ हुई ते अविद्या विनाश जाते। जब गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न होते हैं तब हृदय से दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं कोई शिष्य ऐसे भी हुए हैं, बरसाना में एक भक्त थे जो आंखों से अंधे थे, लेकिन उन्हें गुरु सेवा की, राधा रानी को प्रसन्न किया तो उनको भगवान की लीलाएं भी दिखाई पड़ती। रवि मेरे ऐसे भक्त हैं जिनके पास चश्मा भी है, एक नहीं है दो है, तो भी हमको भगवान नहीं दिखाई पड़ते क्योंकि अभी तक पूरी कृपा नहीं हुई। कई बार लगता है प्रभु जी मुझे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, अभी तक तो आप प्रेम का अंजन नहीं दिख रहा, एक ड्रॉप भी नहीं दिख रहा, क्या बात है, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं है, कहीं गलत नंबर का चश्मा तो नहीं लगा लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये भक्ति का प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये क्रमशः प्रोसेस है। हम ये गारंटी नहीं देते कि चलो आज आप आओ, हाँ शुक्रवार को दीक्षा लो, रविवार को यज्ञ में बैठो और मंगलवार को भगवान के दर्शन हो जाएंगे और बुधवार को भक्ति छोड़ देना, नहीं हम ऐसी सलाह नहीं देते। हमारा प्रोसेस है चक्षु दान दिलो जयी जन्मे जन्मे सब प्रभु से। वी वॉन्ट टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर बर्थ आफ्टर बर्थ। मायावादी क्या सोचते हैं, हाँ बस अभी गुरु से कॉन्टैक्ट हो गया, ज्ञान मिल गया, फिर बस जय गुरुदेव बाय गुरुदेव, है ना, थैंक यू। जैसे मेटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है, हम कुछ खरीदी करते हैं, माल ले लेते हैं, फिर उसको कभी पूछते ही नहीं। आजकल कॉलेज में भी विद्यार्थी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, जैसे ही डिग्री मिलने तक प्रोफेसर से थोड़ा मस्का लगा के रखते हैं, जैसे ही डिग्री मिल जाती है फिर प्रोफेसर को शायद देखते ही नहीं है, है ना। लेकिन वैदिक कल्चर में गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो दिव्य संबंध है जो अध्यात्म पर आधारित है, जिसमें कृष्ण केंद्र में है। जैसे कि विश्वनाथ ठाकुर अपनी प्रार्थना बताते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र में बताया गया है कि गुरु जो है भगवान के बराबर पूजनीय है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान है। एक बार प्रभुपाद लीला में कुछ भक्त प्रचार करने लगे थे कि प्रभुपाद एक्चुअली भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो नम्रता के कारण बोल नहीं रहे, लेकिन हमको उनकी नम्रता का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, हमें उनको भगवान मान के पूजा करना चाहिए, और वो प्रचार कर रहे थे ऐसे। तो प्रभुपाद जी को पता चला, अभी साधारण व्यक्ति होता वो सुनता है कि मेरे को भगवान बोले तो कितने खुश हो जाते। नहीं, आप जो दिखने में सुंदर नहीं भी हो उसको बोलो आप बहुत सुंदर हो तो हवा में उड़ जाएगा, ये ना। गरीब व्यक्ति बोलो कि आप करोड़पति है तो खुश हो जाएगा, कम से कम नाम तो हो गया। लेकिन सच्चे भक्त को आप बोलोगे कि आप भगवान हो तो सो गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि ये जो भावना है मैं भगवान हूँ आप भगवान हैं, इसको मायावाद बोलते हैं, और ये भारत में बहुत फैला हुआ डेंजरस बीमारी है। एक्चुअली इसकी शुरुआत शंकराचार्य से हुई, क्योंकि शंकराचार्य को भगवान ने आदेश दिया था कि आप असत शास्त्रों का प्रचार करो, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन उसके बाद रामानुचार्य आए, उसके बाद मध्वाचार्य आए, और अंत में चैतन्य महाप्रभु आए। तो हम सब जो प्रभुपाद की परंपरा में जुड़ रहे हैं, उनका सौभाग्य है कि हम ऐसे व्यक्ति से जुड़ रहे हैं जो प्रभुपाद से जुड़े हैं, और प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति से जुड़े हैं जो मध्वाचार्य और अंत में चैतन्य महाप्रभु से जुड़े हैं। इसीलिए बोलते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो तो न केवल हम दीक्षा गुरु से संबंध रख रहे हैं, उनके गुरु के गुरु यानी प्रभुपाद, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत, और फिर षड गोस्वामी, फिर चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व और राधा कृष्ण सबसे जुड़ जाते हैं। और न केवल ये, बल्कि जो गुरु महाराज के गुरु भाई हैं उनसे भी हम जुड़ जाते हैं। स्पेशली परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो भी उनसे दीक्षा ले रहे हैं वो उनके गुरु भाइयों का उनसे ज़्यादा आदर करें। आज से मुझे याद है 20-22 साल पहले जब मैं पूना में ही रहता था और मेरी सेवा थी यहाँ पर, मैं तथाकथित अध्यक्ष था यहाँ पर, तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज पूना में आ रहे थे और मुझे बम्बई में, सॉरी, परम पूज्य राधानाथ महाराज पंढरपुर ले जा रहे थे यात्रा, और यहाँ पर परम पूज्य जयद्वैत महाराज आए हुए थे, तो मैं यात्रा में नहीं जा सका, मैं उनकी सेवा में था। तो बाद में एक दिन बाद मैं राधेश्याम प्रभु के साथ महाराज से मिलने गया, बोले कि हम लोग नहीं आ सके थे क्योंकि प्रभुपा जी के सीनियर शिष्य आए थे। तो महाराज जी बोले, इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर व्हेन मोर प्लेजर व्हेन यू सर्व माय गॉड ब्रदर्स देन व्हेन यू सर्व मी। अगर आप मेरी सेवा करने से ज़्यादा आप मेरे गुरु भाइयों की सेवा करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो ये सब प्रभुपाद शिष्यों के लिए अप्लाई होता है क्योंकि हम एक फैमिली में हैं। अभी आने से पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था, परम पूज्य राधानाथ महाराज ने दीक्षा का लेक्चर दिया था, उसमें बता रहे थे कि जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम पूरे एक परिवार से जुड़ रहे हैं। जैसे कोई स्त्री का विवाह होता है तो उसका संबंध फिर पति से होता है, पति के भाई से होता है, देवर से होता है, इन लॉस आउट लॉस, बहुत सारे लंबे लंबे संबंध हो जाते हैं, है ना, तो एक पूरे फैमिली से। तो ऐसे जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम एक्चुअली पूरे गौड़ीय वैष्णव परिवार से जुड़ जाते हैं। और इसलिए हमें न केवल दीक्षा गुरु, जब पथ प्रदर्शक गुरु हैं जिन्होंने पहली बार आपको माला हाथ में दी, कोई व्यक्ति जिन्होंने आपको भागवतम दिया, या शिक्षा गुरु, जो भी सीनियर वैष्णव इस्कॉन में हैं वो हम सबके शिक्षा गुरु हैं। और सच्चे भक्त तो हर एक डिवोटी को शिक्षा गुरु मानते हैं, हर एक से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि इस तरह से जो भावना होती है शिष्य की कि मैं कुछ ग्रहण करूं, तो हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं गुरु स्वीकार करते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, भगवान को गुरु की क्या जरूरत है, सूर्य को दीपक की क्या जरूरत है। ऐसे नहीं कि चलो भाई लाइट जरा दीपक जला वो सूरज क्लियर दिखना चाहिए, वो दीपक तो दीपक ही रहेगा, सूर्य सूर्य रहेगा, कोटि कोटि दीपक मिलके भी सूर्य के बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी यहाँ हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो ओरिजिनल सूर्य हैं वो ईश्वरपुरी से दीक्षा ले रहे हैं। भगवान कृष्ण स्वयं सांदीपनी मुनि की सेवा करते हैं, भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ मुनि की सेवा करते हैं, ये दिखाने के लिए कि गुरु की सेवा से ही सफलता की प्राप्ति होती है। तो ईश्वरपुरी के बारे में प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में बताते हैं, दो घटनाएं बताते हैं जिसका हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। ईश्वरपुरी, ये इनका जन्म हुआ कुमारहट्ट में। कुमारहट्ट ये स्थान जो है, अगर आप सियालदा स्टेशन कलकत्ता से मायापुर की ओर जाते हैं कृष्णनगर, तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है हलीसहार, और वहाँ से 1-2 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है। श्री प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि ये रेलवे स्टेशन उतरना है, यहाँ से ये ट्रेन पकड़ना है, वो किस लिए बता रहे हैं, पेज बढ़ाने के लिए नहीं, वो चाहते हैं कि पूना के भक्त जाएँ वहाँ पर और दर्शन करें। तो जब भी अगली बार आप मायापुर जाते हैं तो ये वाला श्लोक याद करके आप जरूर जाइए, क्योंकि वास्तव में ईश्वरपुरी का रोल इसलिए स्पेशल है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ग्रहण की। ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी हैं, और माधवेंद्रपुरी के बहुत सारे क्वालिफाइड डिसाइपल्स रहे। अद्वैताचार्य भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, नित्यानंद प्रभु भी उनके शिष्य हैं, परमानंदपुरी उनके शिष्य हैं, रंगपुरी उनके शिष्य हैं, रामचंद्रपुरी उनके शिष्य हैं, ब्रह्मानंद भारती उनके शिष्य हैं। फिर क्यों उन्होंने ईश्वरपुरी को चुना, ये आज के तात्पर्य में हम देखेंगे। ईश्वरपुरी जब उनके गुरु महाराज आखिरी स्टेज में थे, तो आप जानते हैं कि वैष्णव हो या संसारी व्यक्ति हो, जब शरीर तो जीर्ण होता ही जाता है जैसे कि उम्र बढ़ती है, और जब माधवेंद्रपुरी बहुत बूढ़े हो गए तब ईश्वरपुरी उनकी पर्सनल सर्विस करते, ये वैष्णव की पर्सनल सर्विस करना एक बड़ा ऑपुलेंस है। छाड़िए वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा, बिना गुरु और वैष्णव की सेवा के कोई सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। तो ईश्वरपुरी पहले तो उनको कृष्ण लीला पढ़ के सुनाते, क्योंकि आखिरी समय में पढ़ना भी मुश्किल होता है और सुनना भी मुश्किल होता है, इसीलिए वो उनको कृष्ण लीला पढ़ के सुनाते। और माधवेंद्रपुरी इतने कमजोर हो गए थे, वो शौच क्रिया के लिए उठकर टॉयलेट तक जाना भी मुश्किल होता था, तो इसलिए ईश्वरपुरी अपने हाथों से उनके मल मूत्र को सफाई करते। ओ, ये मेरे को आशीर्वाद है, मेरे गुरु महाराज की सेवा मिल रही। वैसा नहीं सोचे थे, अरे मुझे क्यों देवी, हाँ कोणी दूसरा कोणी नहीं भेट लगाए, मला लावला या सेवा मधे। वो ये सोच रहे थे कि ये ब्लेसिंग है, मतलब अगर हमें ईश्वरपुरी की तरह कृपा प्राप्त करनी है तो जो भी सेवा हमें मंदिर से मिले या अपने गुरु से मिले या काउंसलर से मिले, सोचना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है, भगवान कितने दयालु हैं, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो फूल माला बना सकते थे, मेरे को ये सेवा मिली है फूल बनाने की, करोड़ों लोग हैं जो लेक्चर दे सकते थे, मुझे सेवा मिली है लेक्चर देने की, करोड़ों लोग सुन सकते थे, मुझे सेवा मिली है सुनने की जागते हुए। ये भी एक चैलेंज है एटलीस्ट आज के दिन। करोड़ों लोग हैं जो सब्जी काट सकते थे और मुझे सेवा मिली है। एक बार बंबई में परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे हैं कि इतने टेक्स मैनी लाइफ्स टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ कटिंग वन पोटेटो फॉर कृष्ण, कि कृष्ण के लिए एक आलू काटने को मिल रहा है। जनरली हम सोचते, अरे ये सब्जी काटने की सेवा तो यू नो एक तुच्छ सेवा है, मेरे को डिपार्टमेंट हेड बनना है, यू नो ऐसा होना चाहिए कि सारे किचन के एम्प्लॉयज मेरे दासों के दास बने। नहीं, एक्चुअली जो किचन इंचार्ज होता है वो क्या सोचता है, मैं दासों के दास हूँ, हमारे सुकुमार कृष्ण प्रभु जी हैं, यार मैं उनको मिलता हूँ, कितने हम्बल नम्र एटीट्यूड, इतने सालों से सेवा करें। तो कोई भी सेवा हो, किसी की सेवा है झाड़ू लगाने की, एक्चुअली मंदिर के झाड़ू लगाना और मंदिर में आरती करना दोनों सेवा बराबर है। दिखने में लगता है कि अरे आरती करने की सेवा कितनी अच्छी है, शायद यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। लेकिन अभी झाड़ू लगाने का कोई यूट्यूब पे आता नहीं है, कभी देखा है कि झाड़ू लगा रहे हैं? ऑफकोर्स अगर उड़ीसा के राजा रथ यात्रा के समय आते तो बहुत अच्छी बात है, उसमें फोटो में आ जाता है। ये कोई भी सेवा एब्सोल्यूट लेवल पर, सबसे बड़ी सेवा है भगवान की सेवा से भी ऊंचा है भक्तों की सेवा, और उससे भी अच्छा है भक्त दासों के दासों की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की सेवा की, माधवेंद्रपुरी इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा कृष्ण लाम कृष्ण लीला सुनाए अनुच्छन। बोले प्रभु जी, गुरु महाराज को कृष्ण कथा सुनाना तो अपराध लगता है, कैसे लगेगा अगर मेरे गुरु महाराज बैठे और मैं लेक्चर दे रहा हूँ, वेरी एम्बारेसिंग। लेकिन अब गुरु महाराज अशक्त अवस्था में है, वो पढ़ नहीं पाते, तो उनको पढ़ के सुनाना ये भी एक बड़ी सेवा है। और वो कितने खुश हुए, तुष्ट है या, तुष्ट है मतलब सेटिस्फाइड, यस्य प्रसाद तुष्ट है या आलिंगन कैला। गुरु महाराज भी शिष्य को आलिंगन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वर दिला, क्या वर दिला, कृष्ण तोमार है प्रेम धन, मे यू रिसीव लव फॉर कृष्ण। कितना बड़ा आशीर्वाद है कि आपको कृष्ण प्रेम मिले। और इसीलिए ईश्वरपुरी प्रेम के सागर। दूसरी और एक शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी के, और एक शिष्य हैं श्री रामचंद्रपुरी, अभी वो भी दीक्षित थे, सीनियर डिवोटी थे, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया था, लेकिन उनका हृदय अभी भी शुद्ध नहीं हुआ था, तो वो निंदा करते थे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने जब माधवेंद्रपुरी अपने आखिरी स्टेज में थे, कृष्णा कृष्णा न पाई लो, कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, एकदम अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे कि मेरा जीवन बेकार हो गया, मनुष्य जीवन होकर भी मैंने कृष्ण को प्राप्त, तो रामचंद्रपुरी आके बोले, कृष्ण कृष्ण पर क्यों ध्यान कर, ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म सर्वव्यापी है, आप क्यों दुख प्रकट कर रहे। माधवेंद्रपुरी क्रोध से गुस्से होके बोले कि आप मेरी दृष्टि से हट जाओ, गेट आउट ऑफ यू रास्कल, मैं आपका मुंह नहीं देखना चाहता, पहले ही मैं दुखी हूं क्योंकि मुझे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई। माधवेंद्रपुरी का दुख जो है वो प्रेम की अवस्था थी, सेपरेशन, लव इन सेपरेशन, भक्त को लगता है कि कृष्ण के बिना पूरा जगत शून्य नजर आता है, युगायतम निमिषे न चक्षुष प्रवृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद वीर, वो एक्सटेसी है। ये गोपियां कृष्ण के लिए ढूंढ रहे हैं, वो एक्सटेसी है, प्रेम का एक परिपक्व अवस्था है। लेकिन रामचंद्रपुरी अपने कम बुद्धि के कारण समझ नहीं पाए, तो इतने गुस्से हुए माधवेंद्रपुरी, बोले मैं शरीर छोड़ रहा हूं, दुखी हूं क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति नहीं, और आपको देखकर शरीर छोड़े, पता नहीं क्या होगा, क्या गति होगी, नरक में भी शायद वेटिंग लिस्ट मिलेगा। ये बोला नहीं, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम अंत समय में देखते हैं, याद करते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम वृंदावन धाम में शरीर छोड़ें, हम सब अभी नहीं, जब भी टाइम आएगा तभी, और भक्तों के संग में हों, या पूना में या बम्बई में जहाँ भी हैं, अगर डिवोटी साथ में हैं और भक्त मिलके गा रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अगर कीर्तन की आवाज़ सुन रहे हैं, भक्त साथ में हैं, तो भी वृंदावन के बराबर है। इसलिए हमें भक्तों के साथ बहुत अच्छा संबंध रखना चाहिए, वैसे भी रखना चाहिए, लेकिन स्पेशली लास्ट स्टेज में वी ऑल नीड ईच अदर। हम जब आखिरी अवस्था में भक्त ही हैं जो हमको कृष्ण का स्मरण दिला सकते हैं। परसों मैं बम्बई में गया था, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो पहले दिल्ली में थे, बम्बई में ट्रांसफ़र हो गए, जस्ट अभी वाड़ा में अभी दीक्षा, उनका नाम हो गया गोविंद प्रिय दास प्रभु, बोरीवली में रहते हैं। तो उनकी माता को कैंसर हो गया है, और वो बहुत पहले दिल्ली में थे तो मेरे से बहुत कॉन्टैक्ट में थे। मैंने उनकी मदर को बोला था आप सोला माला करो, कर रहे थे। तभी कैंसर होने के बाद इतना कष्ट होता है, कीमोथेरापी में जो ट्रीटमेंट होता है वो ज़्यादा कष्टदायक लगता है, ऐसा लगता है कि बमबाट करने से सब सेल्स जो डिस्ट्रॉय करने के। तो माता जी इतने कमज़ोर थे, बोल रहे थे मेरे से जप नहीं हो रहा, लेकिन मैंने कृष्णानंद प्रभु को आप बोला है, वचन दिया है, तो मैं करूँगी। तो मैं सोच रहा था कि अभी मैं स्टेज में तो करूँगा कि नहीं करूँगा पता नहीं, लेकिन मैं किसी को उपदेश कर रहा हूँ वो ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति मेरे गुरु हो गए, वो मेरे को एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। बोलना तो बहुत आसान है कि जब करिए, लेकिन करना, स्पेशली बीमारी में, बुढ़ापे में और अंतिम स्टेज में, ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही संभव। तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था 10-15 मिनट, अचानक फोन आया कि महाराज जी भी बोरीवली में थे और वो शिदामा प्रभु के घर में थे। शिदामा प्रभु ने बताया कि ऐसे ऐसे एक माता जी है को थेरेपी, तो महाराज बोले उनको बुला कर ले आओ। जनरली महाराज बहुत कम लोगों को समय देते हैं, तो गए वहाँ पे और महाराज से मिले। महाराज ने उनको अपनी माला दी, प्रार्थना की, और माता जी ने महाराज से ये बोला, महाराज मुझे सिर्फ ये वरदान दो कि अंत समय मुझे कृष्ण के नाम याद आए। तो महाराज इतने खुश हो गए, देख भी माता जी की दीक्षा भी नहीं हुई है, को सिर्फ 3-4 साल हुए सोला माला करके। मैं सोचा था कॉन्शियसनेस कितनी अच्छी कि अंत समय में भगवान मुझे याद आए, अंते नारायण स्मृति। नहीं तो मैं इतने सारे प्रचार कर लूँ 20-30 साल, इतने भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव सब कोर्स कर लूँ, लेकिन अंत में अगर कृष्ण याद नहीं आए तो फिर से अगले साल, अगले ईयर, फिर अगले जन्म में KG ABCDEFG फिर से कोर्स कर लूँ। तो हमें ये सीखना चाहिए माधवेंद्रपुरी से, ईश्वरपुरी से, कैसे कृष्ण के याद दिलाने, और रामचंद्रपुरी की गलती से भी सीखना चाहिए। बाद में रामचंद्रपुरी गुरु को अप्रसन्न करने के कारण उनका पतन हो गया, वो निंदक बन गए, बस सबका दोष देखते, हाँ ये भक्त ने क्या खाया, देखो ये गोविंददास में गया था क्या खा के आया है ना, ये भक्त है देखो उसके घर के बाहर चींटियां चल रहे हैं, हाँ इसका मतलब चींटियां चल रहे हैं, मतलब कल रसमलाई खाया होगा। और चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने लगे, चैतन्य महाप्रभु पूरी में थे और वो चैतन्य महाप्रभु का भी निंदा करने लगे। महाप्रभु ने क्या किया, अपना प्रसाद खाना आधा कर दिया। सारे भक्तों को बहुत दुख हुआ कि आप इसके बोलने पे क्यों कम खा रहे हो। महाप्रभु बोले नहीं नहीं, वो मेरे हित चिंतक है, अच्छे के लिए बोल रहे हैं। इन कभी कभी महाप्रभु माधवेंद्रपुरी की बात, सॉरी रामचंद्रपुरी की बात सुनते, कभी कभी उसकी अवहेलना करते। जब महाप्रभु ने बहुत कम खाना शुरू किया तब रामचंद्रपुरी उनसे मिलने आए, यू नो, एडवाइस देने के लिए, कंपल्सरी वॉलंटरी एडवाइस, है ना, नहीं चाहिए तो भी मैं देना चाहता हूँ। वो बोले कि आप, मैंने सुना आपने खाना बहुत कम कर दिया, आपको मालूम नहीं है गीता में बताया गया बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए। वो गीता के लेखक को गीता सिखाने के लिए आए, कि मैं, और महाप्रभु को सिखाने लगे, बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, महाप्रभु हंसते रहे, शांत रहे। और थोड़े दिनों बाद रामचंद्रपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ के चले गए। सारे भक्तों को लगा कि सिर के ऊपर एक भारी बोझा था, वो नीचे हो गया, शांत हो गया। तो दोनों कॉन्ट्रास्ट है, ईश्वरपुरी रामचंद्रपुरी। एक ने गुरु को प्रसन्न किया गुरु सेवा से, और एक ने गुरु को नाराज किया। एक की प्रगति हो गई, दूसरे की अधोगति हो गई। तो दीक्षा लेना इनफ नहीं है, दीक्षा का मतलब है हम एडमिशन ले रहे हैं। तो किसी ने अगर एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ऐसा नहीं तो डिग्री मिल जाएगी। तो अगर कोई सोचे मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 4-5 साल रहूंगा तो डिग्री मिल ही जाएगी, नहीं उसको पढ़ाई भी करनी होगी। तो हम जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पर एक गधा भी था ना, वो भी घूमता था, किताबें भी उठाता था, लेकिन उसको अभी तक डिग्री नहीं मिली। तो कई बार हमें लगता है कि मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, अपने आप प्रगति हो जाएगा। नहीं, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा और हरि नाम, बस यही एसेंस है। चैतन्य महाप्रभु से भक्तों ने पूछा कि हमें कृष्ण प्रेम कैसे मिल सकता है। महाप्रभु बोले, सर्व दि वैष्णव चैंट द होली नेम, हरि नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और वैष्णव की सेवा करो। बहुत सिंपल फॉर्मूला। इसके बाद ईश्वरपुरी जब नवद्वीप में आए, अभी देखिए कितना बड़ा ब्लेसिंग हुआ उनको कि गुरु महाराज ने बोला आप महान के भक्त बनो। अभी मैं होता तो शायद उस सेंटेंस को रिकॉर्ड करके सबको सुनाता, देखो है ना मेरे गुरु महाराज ने इतना बड़ा आशीर्वाद। लेकिन ईश्वरपुरी ने किसी को बताया नहीं, और नवद्वीप में आए बहुत सादे वस्त्र धारण किए, किसी को पहचाना नहीं जा रहा, और वो गोपीनाथ आचार्य के घर में रुके हुए थे, और उस समय अद्वैत आचार्य के घर में मिलने आए। अद्वैत आचार्य ने देखा उनको, एक सच्चे वैष्णव अपने आप को छिपा नहीं सकते, जैसे एक कपड़े के अंदर कस्तूरी बांधी गई है तो सुगंध सब जगह फैल जाती है, जैसे एक महान भक्त अपने आप को छिपा नहीं सकते। अद्वैत आचार्य देखने लगे, पूछा, हु आर यू सन, बेटे कौन हो तुम, ऐसे लगता है कि तुम बहुत बड़े वैष्णव। ईश्वरपुरी ने क्या जवाब दिया, आई एम द लोएस्ट ऑफ ऑल शूद्रस, आमी शूद्र अधम, मैं सबसे अधम हूं, और आपके चरणों का दर्शन करने। सबसे पहला हॉलमार्क है वैष्णव का कि मैं सबसे पतित और दूसरे सब मेरे से श्रेष्ठ हैं। तब मुकुंद दत्त वहां पर थे, मुकुंद दत्त को मालूम था कि ईश्वरपुरी महान है, तो उन्होंने गीत गाना शुरू किया, कृष्ण की वृंदावन लीला। जैसे ईश्वरपुरी ने ये गीत सुना, आंखों से आंसू बहने लगे, प्रेम के लक्षण प्रकट होने लगे, और तब सब भक्त समझ गए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और सब ईश्वरपुरी का आदर करने लगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु नवदीप लीला में है, चैतन्य महाप्रभु भी टीचर है, प्रोफेसर निमाई पंडित, अभी तक दीक्षा नहीं हुई उनका, अभी वेटिंग में नाम है, ही इज नॉट येट इनिशिएटेड। और चैतन्य महाप्रभु बहुत उद्दंडी थे, उसको डिवोटीज बोलते थे क्रेस्ट ज्यूवल ऑफ एरोगेंस, अभिमानियों के शिरोमणि, जो बाद में त्रिनादपि सुनी चैन बनने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु घर लौट रहे थे, और रस्ते में ईश्वरपुरी को देखा, महाप्रभु ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उनके नित्य सेवक हैं ईश्वरपुरी माधवेंद्रपुरी ब्रह्मन, ये सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए लोग हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रणाम किया, और ईश्वरपुरी निमाई को देख के सोचने लगे, कौन है ये, कौन है। उन्होंने पूछा, तुम्ही कौन, हे ब्राह्मण तुम कौन हो, की पुंथी आछे, आपके हाथ में एक पुस्तक है, वो कौन सी पुस्तक है, कहाँ क्या सिखाते हो। तो बाकी लोगों ने बताया, जैसे बड़े व्यक्ति होते हैं वो स्वयं नहीं बोलते, निमाई जब चलते थे उसके 4-5 लोग चलते थे, बस लाइक से कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन लीडर होते हैं ना, जैसे थोड़ा दादागिरी करते हुए। तो दूसरे ने बताया, ये निमाई पंडित है, निमाई पंडित, ओ तुम ही तो सही। ईश्वरपुरी बोले, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। महाप्रभु बोले, आज मेरे घर चलो प्रसाद के लिए। शची माता ने बहुत सुंदर प्रसाद बनाया, और निमाई सर्व करने लगे। सबने रिक्वेस्ट किया, आप आयो हमारे घर में, साधु आते हैं तो कृष्ण कथा सुनाते हैं, आप हमें कुछ कृष्ण कथा सुनाओ, कुछ कृष्ण कथा सुनाओ। और कृष्ण कथा सुनाने लगे और ईश्वरपुरी इस तरह से बहुत दिन गोपीनाथ आचार्य के घर में रहे। फिर वो गदाधर पंडित से मिलने गए। गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार हैं, तो गदाधर पंडित भी बहुत प्रसन्न हुए, रोने लगे। और ईश्वरपुरी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था कृष्ण लीलामृत। वो गदाधर पंडित को बोले, मैंने लिखी हुई किताब मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और गदाधर पंडित बहुत खुशी से सुन रहे थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए। ईश्वरपुरी जानते थे कि निमाई पंडित बहुत फेमस है व्याकरण के लिए। उन्होंने बोला, मैंने किताब लिखी है कृष्ण लीलामृत, आप इस किताब का एडिटिंग करो, इसमें कुछ गलतियां होंगे, कुछ शोध करो। महाप्रभु बोले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति एक भक्त के लेखन में दोष देखता है वो बड़ा पापी व्यक्ति है। जैसे कोई मूर्ख वदती विष्णाय, जो उसको बुद्धि नहीं है बोलते विष्णाय नमः, धीर वदती विष्णवे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है बोलते विष्णवे नमः। तो भगवान क्या स्वीकार करते हैं? उभय तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान देखते हैं भावना क्या, विष्णाय नमः विष्णवे नमः। तो अगर मैं आप में दोष देखूंगा तो मेरा दोष होगा। और ईश्वरपुरी सुन रहे थे, उनको ऐसा लगा था कोई एक अमृत से स्नान करा रहे, इतनी खुशी हो रही थी। ईश्वरपुरी बोले, आप परफेक्ट बोल रहे हो, लेकिन फिर भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसका एडिटिंग करिए। तो निमाई पुस्तक को ले गए, अगले दिन लेकर बोले, इसमें एक ही गलती है, एक छोटा सा शब्द है आत्मनेपाद, उसको बदल के करना चाहिए परसमयपाद। तो ईश्वरपुरी बोले, ठीक है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं भी थोड़ा सोचता हूँ। अगले दिन वो फिर लौट कर आए सेकेंड राउंड, और बोले कि मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरे सोचने के अनुसार वो शब्द आत्मनिपात सही है, बदलने की जरूरत नहीं है। निमाई पंडित बोल रहे थे बदलना जरूरी है। और दोनों में थोड़ी देर शास्त्रार्थ हुआ, और अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु, जो पूरे जगत के गुरु हैं, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले केशव कश्मीरी की धजियां उड़ा दी थी। धजियां उड़ाना मतलब नॉट भजिया, धजिया धजियां उड़ाना मतलब जैसे चूर चूर कर देना, क्रश टू पीसेस। वो चैतन्य महाप्रभु जो पूरे वर्ल्ड में चैंपियन थे, वो ईश्वरपुरी से हार मान ली। ये एक महानता है। क्यों हार मानी भगवान ने? दो कारण बताते हैं। एक, भगवान को हमेशा भक्तों से पराजित होने में आनंद होता है। अहम ही भक्त पराधीनो, भगवान अम्बरीश महाराज को कहानी में बोलते हैं कि आई एम सबॉर्डिनेट टू माई डिवोटीज। हम देखते हैं श्रीराम और कृष्ण में कुश्ती होती है, कृष्ण हार जाते हैं। कृष्ण बड़े बड़े पहलवानों को मार डालते हैं, श्रीरामा से हार जाते हैं। बड़े विंबलडन चैंपियनशिप जीत जाते हैं और गली के टूर्नामेंट में हार जाते हैं। भगवान को हारने में आनंद मिलता है। राधा और कृष्ण में भी राधा रानी जीत जाती, ये एक कारण। दूसरा, निमाई पंडित शिष्य हैं और ईश्वरपुरी गुरु हैं। हमेशा शिष्य को गुरु के सामने हार माननी चाहिए। गुरु मोरे जानीला मूर्ख करियो शासन, वेदांत पाठ नाही तुम्हार अधिकार। ये बाद में घटना आती है, दीक्षा के बाद, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद प्रकाशान सरस्वती से मिलते हैं, तो प्रकाशान सरस्वती बोलते हैं कि अरे आप वेदांत का पाठ करना चाहिए, आप सन्यासी होके चैंटिंग डांसिंग कर रहे हो, ये तो बच्चों के लिए स्त्रियों के लिए होता है, आप तो बहुत पीएचडी स्कॉलर हो, आओ हम सब कुछ वेदांत के ऊपर कोर्सेस करेंगे। तो महाप्रभु बोले, मेरे गुरु महाराज ने बोला कि तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु मूर्ख नहीं थे, अभी थोड़े दिनों पहले उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य को पराजित कर दिया था, जितने बड़े पंडित थे। लेकिन महाप्रभु दिखा रहे थे कि शिष्य को हमेशा गुरु के सामने झुकना चाहिए, चाहे कितने भी हम सीनियर हो जाएं, लेकिन गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए। मूर्ख बनना नहीं चाहिए, ये नहीं कि जानबूझ के गलत करना, बोला गुरु महाराज में मूर्खा है, लेकिन अपने आप को मूर्ख मानना चाहिए। फिर मैं जप करने लगा, मेरे गुरु महाराज ने मंत्र दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं जप करने लगा, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, शरीर कांपने लगा। मैं गुरु महाराज के पास गया, बोला गुरु महाराज, व्हाट काइंड ऑफ मंत्र हैव यू गिवन मी, आपने कैसा मंत्र दिया, जपीते जपीते हैल पागल, मैं पागल हो रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज बोले, भाला हैल, वेरी गुड। ये कृष्ण नाम का असली प्रभाव है कि आपके अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हो रहा है। अब आप ये मंत्र दूसरों को बांटो। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुरु महाराज को सबसे बड़ी खुशी होती है जब शिष्य भक्ति में आगे बढ़ते हैं और प्रेम विकसित होते हैं। गुरु महाराज सिर्फ इससे प्रसन्न नहीं होते कि आप कोई डोनेशन दे दें गुरु महाराज को, नहीं, सबसे ज़्यादा डोनेशन ये है कि हृदय से चैंटिंग करना। से परम पूज्य राधानाथ महाराज के एक भक्त ने पूछा, महाराज जी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, 7 दिसंबर आपका अपीयरेंस डे है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो महाराज बोले, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव मी इज टू चैंट द होली नेम विथ फेथ अटेंशन एंड ह्यूमिलिटी। आप ये महामंत्र का जप श्रद्धा के साथ करो, ध्यान पूर्वक करो और त्रिनादपि सुनिचे न, ये भाव से करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते थे, जितने भी गौड़िया मठ हैं सारे मठ को बेच के अगर एक शुद्ध भक्त बन जाए तो मेरा मिशन सफल है। मतलब इतना रेयर है, इतना दुर्लभ है शुद्ध भक्त बनना। और आप सब जो प्रभुपाद के किसी शिष्य से जुड़ रहे हो या जुड़े हुए हो, सबके पास ये पोटेंशियल है। आप सब ऐसे शुद्ध भक्त बन सकते हो जिसे गुरु महाराज को प्रसन्नता हो। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रकाश आनंद सरस्वती को समझाते हैं, अरे प्रकाश आनंद सरस्वती और 60,000 शिष्य सब वैष्णव बन जाते हैं। इमेजिन कितना बड़ा हरि नाम कीर्तन होगा प्रकाश सरस्वती अगर NVCC में कल आते अपने ग्रुप के साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये महासंकीर्तन। नहीं कुछ उनको बोलेंगे प्रसाद लेके आना, नहीं तो किसी सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, मैं आपको शॉर्ट में ये कहानी बताऊंगा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा स्वीकार की। क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ली और कई उन्हें कई साल लिए। मैं भी वाड़ा में था करीब 4-5 दिन, तो मैं रोज ये सोचता था मन ही मन कि आज मैं फिर से अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराना चाहता हूँ। हर शिष्य को सोचना चाहिए कि आज मैं दीक्षा ले रहा हूँ, आज मेरा पहला दिन है, मैं अयोग्य हूँ, ये तो गुरु महाराज की कृपा है मुझे स्वीकार कर रहे हैं, तो कौवे को गरुड़ बना रहे हैं, मेरी कोई पात्रता नहीं है, ये तो गुरु महाराज की अहितु की कृपा है कि वो मुझे इतने अधम को भी अपने कृपा दिखा के भगवान से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति जिसका कोई मकान नहीं हो, गरीब हो, बिखर रहा हो, अचानक प्राइम मिनिस्टर उनको अपने बंगले में ही एक 2 BHK दे दें, है ना, चलो आप मेरे साथ ही रहो, है ना। जैसे हमको प्रभुपाद और गुरु महाराज इस्कॉन के फैमिली में जोड़ रहे हैं, मतलब हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ रहे हैं। इट्स अ ग्रेट जॉय, एक आनंद का उत्सव होता है कि हम ऐसे परिवार से जुड़ रहे हैं जो हमें कृष्ण से जोड़ रहे हैं। तो ईश्वरपुरी के दीक्षा कैसे लेते हैं उस प्रसंग पे थोड़ा बोलना था मुझे। चैतन्य महाप्रभु अभी तक बहुत मस्ती करते थे, बहुत शरारती थे, लेकिन जब उनके पिताजी गुजर गए, उनके भाई ने संन्यास ले लिया, पिताजी गुजर गए और घर में सिर्फ उनकी माँ शची माता और उनकी पत्नी विष्णु प्रिया, तो बहुत थोड़ा गंभीर होने लगे। और उनकी इच्छा थी कि मैं गया जाऊं अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए। वैदिक कल्चर में जब कोई गुजर जाते हैं तो उनके लिए पिंड दान करने जाते हैं। आप में से कई लोग गए? गया नहीं गए? सन 2009 में मैं गया था। ये गया जो स्थान है वाराणसी के पास में है, बिहार में, और 100 किलोमीटर है करीब वाराणसी से। और यहाँ पर एक भगवान विष्णु का मंदिर है, आपने देखा विष्णु पाद मंदिर, जिस भगवान के चरण कमल हैं। इसे बाकी मंदिर में पूरे डीटीज होते हैं, यहाँ पे सिर्फ चरण कमल है और वहीं पर पूजा की जाती है। पास में बहुत सारे गया हैं, एक भीम गया, राम गया, युधिष्ठिर गया, जहाँ पर भीमसेन गए जगह का नाम भीम गया, राम गए तो राम गया, ऐसे बहुत सारे गया हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने कुछ विद्यार्थियों की टोली के साथ गया के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में एक पर्वत है, जब आप कलकत्ता से गया की ओर जाते हैं मायापुर से, तो रास्ते में एक पर्वत पड़ता है, मंदार पर्वत। चैतन्य महाप्रभु अपने मित्रों के साथ ऊपर चढ़े और उस पर्वत पर एक भगवान का मंदिर है मधुसूदन, उसका दर्शन किया, फिर नीचे उतरे। महाप्रभु ने देखा कि मेरे जो साथी हैं वो ब्राह्मणों का आदर नहीं कर रहे, तो इसलिए महाप्रभु जानबूझ के बीमार हो गए। तो कई भक्त, कई उनके साथी दवाई लेकर आ रहे थे, लेकिन महाप्रभु बोले मुझे दवाई नहीं चाहिए, ये क्रोसिन माइसिन ये सब नहीं चाहिए मुझे, क्या दवाई चाहिए? क्या दवाई मांगी उन्होंने? ब्राह्मणों को चरणों को धोया हुआ जल, और वो चरणामृत लेके भगवान की बीमारी अच्छी होगी। और जब वो गया में पहुंचे तो उन्होंने देखा कुछ ब्राह्मण भगवान की आरती कर रहे हैं, कुछ भगवान को दिया धूप दिखा रहे हैं, कुछ फूल अर्पण कर रहे हैं, कुछ गंध अर्पण कर रहे हैं, और उस समय कुछ भक्त गुणगान कर रहे हैं। धन्य है ये भगवान विष्णु के चरण कमल हैं, ये वही चरण कमल हैं जिनकी आराधना स्वयं शिव जी करते हैं। शंकर जी इन हृदयों को, इन चरणों को अपने हृदय में धारण करते हैं। ये चरणों की सेवा माँ लक्ष्मी करती है, ये लक्ष्मी के प्राण हैं, और इन्हीं चरणों को किसने अपने सिर पर धारण किया था? बलि महाराज ने। जो व्यक्ति आधे क्षण के लिए भी इन चरणों का ध्यान करता है उसको यमदूत परेशान नहीं करते। आप जानते हैं यमदूत ने? नहीं, पहले मिलेंगे, अभी तो नहीं मिले। तो अगर आप ऊपर जाके जाने से पहले राधा वृंदावन चंद्र के चरणों का ध्यान से एक सेकंड के लिए ध्यान करना, बस फिर आप यमराज के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। योगी भी प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान के चरणों को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, वो भी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा जाने जा सकते। और भक्ति कैसे मिलती है? आप भगवान के पास भी भक्ति नहीं मिलेगी, देवताओं के पास तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप भगवान के पास भी जाओगे, सॉरी मैं भक्ति नहीं दे सकता, आपको मुक्ति चाहिए मैं दे दूंगा, आपको बड़ा बंगलो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन भक्ति कैसे मिलेगी फिर? एक शुद्ध भक्त की कृपा से। इसीलिए हम दीक्षा स्वीकार करते हैं कि हम उनके द्वारा भक्ति मांगने आए, फिर इसकी भी भक्ति। एकाकी अमार नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धनी। अकेले मेरे अंदर शक्ति नहीं है गुरु महाराज, आप मेरे पर कृपा करो, मेरे को कृष्ण नाम दो, मेरे को नाम में रुचि दो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरु महाराज से यही मांगना चाहिए, मुझे शुद्ध भक्ति दो, मेरे को शुद्ध भगवान के चरणों में प्रेम दो। अब चैतन्य महाप्रभु ये चरण ये महिमा को सुन रहे थे। एक और श्लोक, ये वही चरण कमल हैं जिनसे गंगा माता प्रकट होती है। गंगोत्री से गंगा आती है, एक्चुअली भगवान के चरणों से आ रही है। भागीरथ तपस्या करके ले आए, फिर वो नीचे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ऋषिकेश और हरिद्वार, फिर कानपुर, फिर प्रयाग, फिर वाराणसी, पटना, कलकत्ता होते मायापुर होते हुए कलकत्ता, फिर गंगा सागर। एक्चुअली आप देखो तो गंगा जो एक बहुत बड़ा चरणामृत है, 1500 किलोमीटर चरणामृत का बर्तन है, और ये मूविंग चरणामृत है, मूविंग चरणामृत। और जहाँ गंगा है वहीं तीर्थ बन जाते। अगर कोई हवा भी चलती है गंगा को, समझो आप जप नहीं करे बैठे हुए हैं और गंगा किनारे और हवा चल रही है, तो हवा के स्पर्श से भी कृष्ण भक्ति मिल जाती। ऑफकोर्स आपको जप भी करना चाहिए, लेकिन वह हवा में इतनी शक्ति है कि हवा के स्पर्श से ही कृष्ण नाम प्रकट होता है, हरि 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 हरि। तो चैतन्य महाप्रभु इन महिमा को सुन रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। और उस समय पीछे मुड़े और देखा एक महान भक्त हैं ईश्वरपुरी। महाप्रभु पहले नवद्वीप में ईश्वरपुरी से मिल चुके थे। ईश्वरपुरी को देख के उन्होंने प्रणाम किया, दोनों एक दूसरे को गले मिले, और महाप्रभु बोले, गया यात्रा सफल हैल अमार, मेरी गया की यात्रा सफल हो गई। यहां पर आकर पिंडदान करने से जिस व्यक्ति के नाम से पिंडदान किया है उसी को लाभ होता है, लेकिन आप जैसे महात्मा के दर्शन करने से हजारों हजारों पूर्वजों का उद्धार हो जाता है। से बताया गया कि वैष्णव का दर्शन गंगा से भी ज्यादा पावरफुल है। जहां वैष्णव रहते हैं वहां सारे तीर्थ रहते हैं। जहां कोई वैष्णव है, कोई भी नदी बह रही हो, वो गंगा यमुना के समान है। कोई भी पर्वत हो, जैसे यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, वो भी गोवर्धन के समान हो जाते, और कोई भी वन हो वो वृंदावन बन जाता है। और जहाँ पर वृंदावन चंद्र है वो तो वृंदावन में वैष्णव और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर राधा वृंदावन चंद्र है और सारे भक्त उनके पार्षद हैं जिनकी कृपा को बांट सकते हैं हमें। आज मैं यहाँ पर आया पिंडदान देने के लिए, लेकिन आपके दर्शन से ही हजारों पिंडदान वो पूर्वजों का उद्धार हो गया। आपसे बढ़कर तीर्थ नहीं है, आप मुझे भाव सागर से बाहर निकालिए। महाप्रभु सिखा रहे हैं कि शिष्य को क्या प्रार्थना करनी चाहिए, प्लीज टेक मी आउट ऑफ दिस ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के सागर से मुझे बाहर निकालो, मैं अपना शरीर आपको अर्पण करता हूं, मैं बदले में एक ही चीज चाहता हूं। आज के दिन आप मेरे पीछे बोले क्या मांगना चाहिए, कृष्ण पाद पद्म गंध देह ही अमार, प्लीज गिव मी द नेक्टर ऑफ कृष्णस लोटस फीट, कृष्ण के चरणों की जो गंध है वो मुझे प्रदान कर। अपनी प्रशंसा सुन के ईश्वर पूरी लज्जित हो गए, बोले नीमा है, मैंने आपको पहली बार नवद्वीप में देखा, तब से मुझे पता है तुम भगवान के अवतार हो। कल रात को मुझे एक स्वप्न आया था और सपने के अनुसार मुझे आज आपसे मिलना ही था, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, जो कृष्ण के दर्शन से जो आनंद मिलता है वो आपके दर्शन से मिल रहा है। इस तरह दोनों मीठी मीठी बातें कर रहे थे, भगवान बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं। भगवान पिंड दान करने गए, ईश्वरपुरी अपने घर में चले गए और फिर महाप्रभु लौट के आए और शाम को प्रसाद बना रहे थे, भगवान को भोग लगा रहे थे। जैसे ही भोग लगाना कंप्लीट हुआ, पूर्ण हो रहा था, दरवाजे पे आवाज सुनाई पड़ी। ने दरवाजा खोला तो देखा कौन है, ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी आते ही बोले नीमाई, मैं बिल्कुल सही समय आ गया, उपयुक्त समय। सही समय कब होता है, जब ऑफरिंग पूरा हुआ हो, महाप्रसादे गोविंद, आज आप लोग थोड़ा जल्दी आ गए, हरे कृष्ण, ऐसे आते रहिए। तो भगवान ईश्वरपुरी मजाक में बोल रहे हैं, मैं सही समय, आवाज सुनाई पड़ी ऑफरिंग की, सही समय आया। निमाई बोले बहुत अच्छा, आपके लिए सारा प्रसाद है। एक्चुअली निमाई को मालूम नहीं था, उन्होंने कोई काउंट नहीं दिया था मैं आ रहा हूँ प्रसाद के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, सारा प्रसाद उनको दे दिया। नहीं नहीं हम दोनों आधा आधा लेंगे, लेकिन सारा ईश्वरपुरी को। क्या सिखाने के लिए, कैसे शिष्य ने गुरु की सेवा करनी चाहिए, और दूसरा भगवान भी अपने भक्तों की सेवा में आनंद लेते हैं। जैसे सुदामा विप्र जब आते हैं तो भगवान उनके चरणों को धोने में आनंद लेते हैं, स्वयं रुक्मिणी उनको चंवर डुला रहे हैं ये ब्राह्मण को, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने सब ईश्वरपुरी को दे दिया, और फिर उसके बाद जब अंदर गए किचन में तो देखा फिर से प्रसाद वहां पर है, अदृश्य रूप से लक्ष्मी देवी आई और सब प्रसाद फिर से बना दी। जो भी ये कथा को सुनता है कि कैसे स्वयं भगवान श्री गौर हरि अपने भक्त ईश्वरपुरी को भोजन करा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, वो व्यक्ति को एक खजाना मिलता है, और वह खजाना है शुद्ध कृष्ण प्रेम। स्पेशली आज के दिन ये कथा सुनने का लाभ और भी ज्यादा होता है। चैतन्य महाप्रभु जब कुमार हट गए ईश्वरपुरी के जन्म स्थान, तो बोल रहे थे कुमार हट कुमार हट, ये मेरे गुरु के प्रकट होने का स्थान है, और अश्रु प्रवाह करने लगे। उनको याद करते हुए उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी बोली ईश्वरपुरी, और वहां की मिट्टी को खाने लगे। उन्होंने अपने बैग में थोड़ा सा भर लिया, और तब से प्रथा हो गई, इतने सब गौड़ीय वैष्णव जाते हैं वहां पर थोड़ी धूल लेते हैं कि वहां पर गड्ढा हो गया अभी, और अभी पानी भर गया, उसको चैतन्य डोब बोलते हैं। थोड़े दिनों बाद महाप्रभु ईश्वरपुरी के पास गए और बोले मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं आपसे मंत्र दीक्षा लेना चाहता हूं। ईश्वरपुरी सोचने लगे कि आप तो स्वयं भगवान हो, आप स्वयं नारायण हो, आप वही हो जिन्होंने ब्रह्मा जी नारद व्यास के गुरु आप ही हो, आप मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूं, लेकिन फिर भी आपकी अगर आज्ञा है सेवक के रूप में। जो सच्चे गुरु ऐसा ही सोचते हैं, इसके केस में तो ऑब्वियस है क्योंकि भगवान को कैसे दीक्षा दे सकते हैं, लेकिन सच्चे गुरु हमेशा सोचते हैं कि मैं शिष्यों का सेवक हूं। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर इतने पावरफुल गुरु, हजारों शिष्य, जब कोई शिष्य प्रणाम करने आता तो वो झुक के बोलते दासोस्मि आई एम योर सर्वेंट। तो गुरु भी सेवक है, वो उनकी सेवा क्या है कि शिष्य को भक्ति में आगे बढ़ाना, उनको मंत्र और भक्ति का ज्ञान देना, उनके गलत रास्ते पे जाने से रोकना। और शिष्य की सेवा क्या है, न केवल गुरु के लिए पैसे या जो भी चीज़ अर्पण करना, गुरु के बताए हुए मार्ग में टिके रहना, लॉयल्टी, गुरु के प्रति वफादारी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जब कोई शिष्य गलती करता है या अपराध करता है तो फिर गुरु महाराज को उसका फल भुगतना पड़ता है। तो कई बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार होते थे, तो भक्तों ने पूछा तो प्रभुपाद जी बताते कि कई जो शिष्य हैं जब वो कोई पाप करते हैं या नियम भंग करते हैं तो शिष्य को उसका गुरु को फल भुगतना पड़ता है। स्पेशली जिन भक्तों ने दीक्षा ले लिया बहुत साल पहले या अभी ले रहे हैं या लेने वाले हैं, बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम अपने बिहेवियर से गुरु के नाम खराब नहीं करें और उनका हेल्थ में भी प्रभाव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के बोलने पर ईश्वरपुरी ने उनको दशाक्षरीय मंत्र दिया और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी की परिक्रमा की और बोले कि अब मैं आपको अपना शरीर अर्पण कर रहा हूँ, मेरे पर दया करो, मेरे अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट। ईश्वरपुरी इतने खुश हो गए, निमाई पंडित को गले लगाया और दोनों के आंखों से आंसू आ गए, इतने आंसू कि दोनों का स्नान हो गया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ के जप करने बैठे और कृष्णा ओ कृष्णा वृंदावन मथुरा गोवर्धन वो दौड़ने लगे। अब प्रेम भक्ति के रस का आस्वादन कर रहे थे। अभी तक चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का वर्णन नहीं किया था और न ही कभी कृष्ण प्रेम के लक्षण दिखाए थे, लेकिन अब दीक्षा होने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रेम के लक्षण प्रकट करने लगे। उस समय कुछ विद्यार्थी थे उनके साथ, तो महाप्रभु बोले आप सब नवद्वीप जाओ, मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं भौतिक संसार में नहीं रहूंगा, मेरे स्वामी मथुरानाथ कृष्ण को मिलना चाहता हूं। और सारे विद्यार्थी ने रोकने का प्रयास किया लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। और जब वो निकल ही रहे थे वृंदावन के लिए तब उनको एक आवाज सुनाई पड़ी, हे निमाई पंडित, अब आपके वृंदावन जाने का समय नहीं आया है, आपका अवतार हुआ है सबको कृष्ण भक्ति के बांटने के लिए, आप वैकुंठ के राजा हो और अपने सारे पार्षदों के साथ प्रकट हुए हो घर घर में हरि नाम फैलाने के लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो प्रेम ब्रह्मा शिव और नारद को प्राप्त करना भी बड़ा दुर्लभ होता है, वो प्रेम कृष्ण प्रेम आप सबको वितरित करोगे और बाद में आप वृंदावन जाओगे, हम तो आपके नौकर हैं, हम आपके दास हैं, ये देवता बोल रहे थे, हम आपको सिर्फ याद दिला रहे हैं आप इस कार्य से आए हैं और बाद में आप वृंदावन जाओगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु फिर लौट कर आ गए। जो भी ये कथा को सुनता है कि कैसे महाप्रभु गया में गए, कैसे ईश्वरपुरी से मिले, उसको हृदय में भगवान श्री गौरंग महाप्रभु के दर्शन होते हैं। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु गया छोड़कर वापस नवद्वीप आते हैं अपने मित्रों के साथ। रास्ते में एक स्थान में आते हैं जिसका नाम है कनाई नटशाला, जहां पर बहुत सारे नाटक हुए थे इसलिए इसका नाम कनाई नटशाला हुआ। और उस स्थान पर वो कृष्ण को याद कर रहे थे, कृष्ण कृष्ण को था गेला। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरह से कृष्ण के लिए विरह के आंसू बहाना, इसी से कृष्ण की प्राप्ति होती, द टीयर्स ऑफ सेपरेशन। जब विरह में भक्त पुकारता है कृष्ण को तब कृष्ण की प्राप्ति होती। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ऐसा बोलते थे, अनलेस यू क्राई फॉर कृष्ण यू कैन नॉट गेट कृष्ण। जब तो आप कृष्ण के लिए रोते नहीं है तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। ये रोना मतलब नकली रोना नहीं कि कुछ आप कुछ लगा दो जिससे कि आंसू आए, ये रोना तब आता है जब हम सिंसियरली नाम लेते हैं, सिंसियरली सच्चे दिल से सेवा करते हैं वैष्णव की गुरु की और जो भी प्रभुपाद और प्रभुपाद के प्रतिनिधि बताते हैं, तब वो प्रेम की अवस्था थी। तो महाप्रभु ऐसे पुकार रहे थे कृष्ण कृष्ण और अचानक उनको एक पेड़ के नीचे अशोक वृक्ष नीचे साक्षात नंदनंदन श्याम सुंदर मुरलीधर कृष्ण के दर्शन हुए। वो दौड़ने लगे कृष्ण को पकड़ने के लिए लेकिन कृष्ण चले गए और फिर कभी दर्शन नहीं हुए। पूरे जीवन भर वो विरह में थे। फिर वो नवद्वीप में लौट कर आए और अपनी पाठशाला शुरू की, निमाई कोचिंग क्लासेस। और उसमें सब पाठशाला में हर एक लेक्चर में वो कृष्ण ही बोलते। कोई बोलता है व्याकरण का मीनिंग क्या है, कृष्ण। कोई प्रश्न पूछते हैं, मान लो अभी आज के क्लूज में जो कैलकुलस या कोई एलजेब्रा उस समय तो नहीं था, उसका मीनिंग क्या है, कृष्ण। उसका इंटीग्रेशन क्या है, कृष्ण। वर्णाश्रम का मीनिंग क्या है, नारायण। 6 घंटे तक ऐसी क्लास चलती रही और क्लास के बाद महाप्रभु को होश आया, बोले कसा वाटला कैसा लगा क्लास। सब बोले आपने कुछ बोला ही नहीं सिवाय कृष्ण के। तनिमाई बोले आप दूसरे कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो, मैं अब छोड़ के जा रहा हूँ। सारे विद्यार्थी बोले ब्रह्मा जी भी आएंगे तो भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपसे ही क्लास लेंगे, आप हमें सिखाइए कैसे भगवान का नाम लें। और चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण मंत्र तो सिखाया था और इस समय क्या सिखाया, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरिहराय नमः, कृष्ण यादव गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम। इस तरह से फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। तो आज बहुत पवित्र दिन है, चैतन्य महाप्रभु भगवान होकर भी ईश्वरपुरी की कृपा के बिना कृष्ण प्रेम नहीं दिखाते, जिससे हम सीख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है गुरु की सेवा करना, गुरु को प्रसन्न करना। और यहाँ पर इस्कॉन में हो सकता है कि आपको अपने गुरु महाराज का पर्सनल संग नहीं मिले, लेकिन अगर आप जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो मंदिर के भक्त है या काउंसलर है, जो भी सीनियर वैष्णव हैं, वो हमको गुरु महाराज से जोड़ रहे हैं, और अगर हम उनकी सेवा कर रहे हैं उनके गाइडेंस में, तो हमें वही कृपा मिलती है जो डायरेक्टली गुरु की सेवा या प्रभुपाद की सेवा से। इनफैक्ट स्पेशली परम पूज्य राधानाथ महाराज दीक्षा के समय भी बोलते हैं कि हमें व्रत लेते हैं कि मैं चार नियम पालन करना, 16 माला करना और दासों के दास के रूप में सेवा करना। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि जो भी प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि कोई हमें सेवा दें तो खुशी से स्वीकार करना। और आज के दिन जिन्होंने दीक्षा ले ली है या जो दीक्षा लेने वाले हैं, ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे ईश्वरपुरी ने माधवेंद्रपुरी की नम्रता से सेवा की, वैसे मैं भी अपने गुरु महाराज और पूर्वज आचार्यों की सेवा कर सकूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी का सत्कार किया, वैसे हम भी गुरु महाराज और उनके गुरु भाइयों को आदरपूर्वक व्यवहार कर सकें। सब लोग 2 सेकेंड आँख बंद करके गुरु महाराज, प्रभुपाद और स्पेशली ईश्वरपुरी के समाधि को याद करते हुए प्रार्थना करें कि हम कृष्ण प्रेम इसी जन्म में प्राप्त कर सकें। ईश्वरपुरी पाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्वेत देव प्रभु के लिए और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।
हरे कृष्णा। हम सबको पता है कि गौर कथा और कृष्णानंद प्रभु, ये कितना सुंदर समीकरण है, कितना सुंदर सूत्र है। आइए हम इस सुंदर गौर कथा के लिए कृष्णानंद प्रभु को 3 बार हरि बोल बोल के धन्यवाद देंगे हृदय पूर्वक। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इस ग्रेस कृष्णानंद प्रभु की। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट स्पेसिफिक जो अभी यज्ञ होने वाला है, जिन्होंने अभी रिसेंटली परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा ली, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है। आप सभी को पता होगा कि आज का पारणा समय 10:53 है। जिनकी दीक्षा हुई है उन्होंने उसके पहले एक चावल का दाना या एक छोटा सा ग्रेन आप खा सकते हैं, और उसके बाद आपको नहाना नहीं है, क्योंकि नहाने की सुविधा भी यहाँ नहीं है और आप दूर दूर से आए होंगे, तो यहाँ सिर्फ आचमन करना है। आचमन करने के बाद मंदिर के हॉल में ये यज्ञ होने वाला है। हॉल के बाहर रजिस्ट्रेशन टेबल रखा है, आपको रजिस्ट्रेशन टेबल के ऊपर अपना नाम लिख के ही अंदर जाना है। कार्यक्रम का शेड्यूल 10:15 से 10 बजे तक दीक्षा का प्रवचन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा, ये वीडियोस द्वारा प्रवचन होगा, और ये चेंज हो गया ठीक है। ये अनाउंसमेंट के बाद रेवतीपति प्रभु और थोड़ा डिटेल इसके बारे में जानकारी देंगे। अब सभी भक्तों को पता होगा कि शुक्रवार के दिन हमारा जो गोविंदाज रेस्टोरेंट है, इसका इनॉग्रेशन श्रीमान राहुल जी बजाज इनके कर कमलों द्वारा हुआ। ये रेस्टोरेंट परसों से ओपन हो गया है, और ये इस बार इस रेस्टोरेंट की एक विशेष खासियत हमने रखी है, वो है कि हम लोग यहाँ लकड़ी का घाना का ऑयल यूज कर रहे हैं, और साथ साथ ग्लूटेन फ्री रेस्टोरेंट ये है, साथ साथ वहाँ सल्फर फ्री शुगर भी यूज करना शुरू किया है, और इस प्रकार ये रेस्टोरेंट हेल्दी भी है और काफ़ी टेस्टी भी है, और एक बहुत अच्छा जगह में और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी वहाँ क्रिएट गया है। तो आप आपके रिलेटिव संबंधी है और मित्र परिवार, उनको ये इसके बारे में जानकारी दे सकते हो। पिंपले सौदागर की रथ यात्रा आज दोपहर को तीन बजे शुरू होगी और यह रथ यात्रा रामकृष्ण मंगल कार्यालय के में रामकृष्ण मंगल कार्यालय से शुरू होगी। ये अनाउंसमेंट वैष्णव वैदिक सोशोलॉजी इस कोर्स के रिलेटेड है। ये कोर्स हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज द्वारा बालाजी हॉल में लिया जा रहा है। ये कोर्स का आज दूसरा दिन है। ये कोर्स का पहला सेशन 10:30 से 12:30 और दूसरा सेशन 2 से 4 होने वाला है। यह अनाउंसमेंट तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के फेस्टिवल के बारे में है। 16 मार्च को यह फेस्टिवल शनिवार के दिन मनाने जा रहे हैं और इस फेस्टिवल के लिए परम पूज्य इंद्रधुम्न स्वामी महाराज, परम पूज्य बीबी गोविंद स्वामी महाराज और श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु प्रेजेंस होने वाले हैं। और इस पूरे फेस्टिवल में कीर्तन, ड्रामा और ऑफरिंग्स, प्रसादम, इस प्रकार का ये फेस्टिवल है। लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल जानकारी आपको वृंदा देवी सेंटर में मिलेगा। और उसी दिन सभी भक्तों के लिए खुशखबर है कि 17 दिन मतलब 16 तारीख को ये फेस्टिवल होगा, 17 तारीख को रविवार है और इस रविवार के दिन मंदिर में जो क्लास होने वाला है वो दो महाराज एक साथ क्लास देने वाले हैं, हिज होलीनेस इंद्रधुम्न स्वामी महाराज और हिज होलीनेस भक्त बीबी गोविंद स्वामी महाराज। अनाउंसमेंट स्पिरिचुअल टैलेंट सर्च कॉन्टेस्ट की ओर से है। आज का बुक है बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट पार्ट 2, ओरिएंटेशन 10th मार्च, एग्जाम 17 मार्च और इसका रजिस्ट्रेशन टेंपल के आउटसाइड के ऊपर है। क्रिएटिव आर्ट वर्कशॉप फॉर एज अबव 15 स्टार्टिंग फ्रॉम 10th मार्च। तो इसके बारे में डिटेल मतलब क्रिएटिव आर्ट वर्कशॉप 15 साल के बच्चों के ऊपर के बच्चों के लिए ये वर्कशॉप होने वाला है। ये वर्कशॉप 10 तारीख को शुरू होगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी आपको नोटिस बोर्ड के ऊपर मिलेगा। अभी यज्ञ के बारे में रेवतीपति प्रभु कुछ अनाउंसमेंट करेंगे।
हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का यहां पर हार्दिक स्वागत है। तो पहले जो भक्त यज्ञ वाले डिवोटीज के साथ आए हैं उनके लिए कुछ सूचना है। जो भक्त आज यज्ञ में भाग लेंगे उनके साथ जो भक्त आए हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रसादम की व्यवस्था मुकुंद हॉल यानी कि फर्स्ट फ्लोर प्रसादम हॉल जो है वहां पर की गई है, वो ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। वहां पर कुछ वॉलंटियर की आवश्यकता भी है, कुछ लोग प्रसाद सर्विंग करने के बाद प्रसाद ले सकते हैं, कुछ वॉलंटियर वहां पर चाहिए। और जो लोग साथ में आए हैं जिन लोगों का यज्ञ है उनके साथ में, उनके लिए लंच कूपन एक अलग से कूपन बनाया गया है। तो ये कूपन उनको जो यज्ञ में भाग लेने वाले हैं उनको मिलेगा और वो आपको देंगे आप उनके साथ में है। तो उन भक्तों के लिए प्रसाद 1:15 पर मुकुंद हॉल जो फर्स्ट फ्लोर प्रसादम हॉल है जहां पर अभी ब्रेकफास्ट होने वाला है वहां पर होगा। और ब्रेकफास्ट प्रसाद लेने के बाद आप प्रभुपाद के पीछे जो गेट है वहां से घुसकर वहां पर बैठने की व्यवस्था है। वहां बैठकर आपके जो भी परिचित हैं या पति पत्नी इत्यादि हैं उनके यज्ञ में भाग लेना आप देख सकते हैं, वहां पर जगह बनी है उनके लिए। तो आप लोग ब्रेकफास्ट के लिए जा सकते हैं और जो लोग यज्ञ में भाग लेने वाले हैं वो कृपया करके यहीं बैठे रहिए, थोड़ा सा उनके लिए अलग से विशेष अनाउंसमेंट है। ब्रेकफास्ट अभी शुरू हो गया है मुकुंद हॉल में, आप लोग ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाइए जो लोग यज्ञ में नहीं है, और जो लोग यज्ञ में भाग लेने वाले हैं वो कृपया करके यहां पर बैठ जाइए।